شر الشيطان الذين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد
وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها صلوا على
محمد.
جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں آج کی گفتگو کا عنوان ہے قرآن مجید میں ذکر کی گئی قسمیں. وہ قسمیں جو قرآن مجید میں جن کا ذکر آیا ہے اور اس کی وجوہات مختلف مفسرین نے مختلف بیان کی ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ سے بلند ہو. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں, کوئی مخلوق خالق سے بلند نہیں ہو سکتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عموماً قسم جو انسان کھاتا ہے وہ اس کا مقصد تاکید ہوتا ہے, یعنی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں, غلط نہیں کہہ رہا ہوں, اس کے لیے وہ قسم کھاتا ہے. اب جو شرعی قسم ہے وہ ایک الگ بحث ہے کہ شرعی قسم میں سوائے لفظ اللہ کے علاوہ جو دوسری مخلوقات کی قسم کھائی جاتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے. شرعی قسم وہی ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو, جیسے واللہ باللہ تاللہ, اسی کو ہم قسم کہتے ہیں. یہ علیحدہ گفتگو ہے. قرآن مجید میں جن قسم کا ذکر آیا ہے وہاں ایک طرف تو قسم کھائی گئی, دوسری طرف مظاہر زندگی کو بیان کیا گیا ہے, طبیعت کا تذکرہ ہے, یعنی مظاہر طبیعت کا تذکرہ ہے, ان چیزوں کا ذکر ہے جو انسان جس کی طرف راغب ہے, اور جو چیزیں انسان جس کے بغیر رہ نہیں سکتا ہے, جو انسان کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہے انسان کی زندگی میں, جیسے سورج اور اس کا طلوع ہونا, رات اور اس کا اندھیرا, یہ سب چیزیں انسان کے لیے بہت اہم ہیں کیونکہ انسان طبیعت کے اندر رہتا ہے اور طبیعت کی ہر چیز انسان کو متاثر کرتی ہے, یہاں تک کہ یہ پھل, یہ تمام چیزیں یہ انسان کی زندگی میں ضروری ہیں. حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس پھل کی قسم کھائی گئی وہ پھل مراد ہے, بلکہ وہ اس قسم کی وہ تمام چیزیں جو اس کے ذمن میں آتی ہیں کہ جس کے بغیر انسانی زندگی کا لطف اور انسانی زندگی کا زندگی جس کے بغیر اجیرن ہے, ان چیزوں کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو انسان کے لیے اہمیت کی حامل ہے, جو انسان کے لیے بہت بڑی چیز ہے, وہ نہ ہو تو انسان کی زندگی میں اجالا ہی نہیں, اندھیرا ہی اندھیرا. جیسے سورج ہے, اللہ کے نزدیک تو ہم نے بتایا نا کہ اللہ کے نزدیک تو ہر چیز اس کی مخلوق ہے, لیکن بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی مخلوقات کی قسم کھاتا ہے کہ وہ مخلوقات تمہارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. جس کے لیے کہا جا رہا ہے نا اس کے لیے تو بہت اہمیت کی حامل ہے, بنسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بلند تو کوئی چیز نہیں ہے جس کی اللہ قسم کھائے, لیکن جن کے لیے یہ قسم پیش کی جا رہی ہے وہ ان کی زندگی میں بہت اہم ہیں. क्योंकि उनको जो है समझाना है, उन्हें जो है दिलासा देना है और उनको जो है ताकीद करना है और उन्हें जो है बावर करवाना है, उन्हें यकीन दिलाना है। तो जिन्हें यकीन दिलाया जा रहा है उनके लिए तो ये सारी चीजें बहुत अहम है। अल्लाह सुभानहु तआला ने यूं तो कोई भी चीज को बगैर वजह के नहीं पैदा किया है, कोई दुनिया की कोई शय हकीर नहीं है, कोई शय जो है वो कमतर नहीं है, कोई शय पस नहीं है, सब के सब अल्लाह की मखलूक है, सब के सब अल्लाह की खिलकत है। उसके लिए हर चीज के लिए जो है नाज़ो नेम से पाला गया है हर चीज को। कांटे की रग में भी है लहू सब्ज़ार का, पाला हुआ है वो भी नसीमे बहार का। तो कोई चीज यहाँ अबस नहीं है, आपके लिए जो है वो कांटा है, लेकिन खुद कांटा अपनी अपने लिए तो कांटा नहीं है ना, कांटा खुद अपने आप को तो नहीं छुपाता है, तो खुद वो उसके लिए तो कांटा नहीं है। तो लिहाजा कोई चीज अबस नहीं है, आप और हर चीज एतबार तबकात के एतबार से कोई चीज किसी चीज की जरूरत और की वजह से जो है वो अहम हो जाती है। प्यासे के लिए पानी से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं है, भूखे के लिए खाने से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं है। इसी तरीके से अगर आप कोई चीज देखें उसकी खूबसूरती को भी अगर आप देखें तो किसी निस्बत की वजह से ये सारी चीजें बनिस्बत है, अहम भी इसी एतबार से, ये चीज उस चीज से अगर आप निस्बत देंगे तो उस एतबार से घटती और बढ़ती है। जमात का जब तकाबुल नबात से किया जाएगा तब आप कहेंगे कि नबात अफजल है जमात से, लेकिन खुद जमात अपनी जगह के ऊपर जो है वो अपना मकाम रखती है। उसको आप अगर आप किसी से पहले ना करें, किसी से मुकायसा ना करें, किसी से मुकाबला ना करें, तो वो चीज खुद अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है, वो चीज खुद अपनी जगह अहमियत की हामिल है, अबस नहीं है, बेकार नहीं है, वो जो है जरूरी है। नबात अगर जमात ना होता तो आप बताइए नबात नबात का महल कहाँ होता। ये मिट्टी जो जमात में आती है इसी के सीने पर तो दरख्त खड़ा हुआ है, अगर ये मिट्टी ना होती तो दरख्त किसके सीने पर खड़ा होता और किसकी छाती से खून चूस कर जो है इतना जवान होता और इतना जो है खदावर होता, इतना जो है तनावर होता, इतना ऊंचा। तो ये सारे जो है ये फल फूल ये सब मोहताज है इसी जमीन के, लेकिन आसारे हयात नबात में जमात से ज्यादा है। इसीलिए जैसे जैसे आसारे हयात बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसकी अजमत भी बढ़ती जाएंगी। यकीनन जमात से फजीलत में नबात ज्यादा है, लेकिन निस्बत की वजह से कि नबात से जब निस्बत पैदा होगी तब नबात की फजीलत बढ़ेगी जमात से। फिर हैवान से जब आप नबात का मुकाबला करेंगे तब हैवान की अजमत ज्यादा नजर आएगी बनिस्बत नबात की। इसी तरह जब आप हैवानों से इंसान का तकाबुल करेंगे तब इंसानों की फजीलत हैवानों से बुलंद नजर आएगी। तो ये निस्बत के एतबार से यहां जो कसम खाई गई इंसानों को समझाने के लिए, इंसानों को ताकीद के लिए, क्योंकि ये इंसान की जिंदगी की अहम तरीन हकीकतें हैं, ये वो चीजें हैं कि जो ना हो तो फिर इंसान इस दुनिया में सांस नहीं ले सकता है, इंसान इस दुनिया में जो है जिंदा नहीं रह सकता है। इंसान को जिंदा रहने के लिए ये सारी चीजें जरूरी है, उसको दरख्तों की भी जरूरत है, उसके फलों की भी जरूरत है, इंसान को जो है सूरज की रोशनी की भी जरूरत है, चांद और सितारों की भी जरूरत है, उसके लिए उसके लिए पानी और जमीन की भी जरूरत है, हर चीज की जरूरत है इंसान के लिए। और उन तमाम चीजों का तस्करा कुरान मजीद ने मुख्तलिफ कसम में किया है। जैसे कसम खाई गई है कि वशम्स सूरज की कसम और उसके बरामद होने की, वशम्स वज़ुहा वल क़मर इज़ा तलाहा, चांद की कसम और इसकी चांदनी की। इसी तरह वस्तुहा दूसरे सूरे में, इस सूरे में जो है 7-8 कस्में खाई गई हैं जो आपकी नजर में है कि वश्शम से वस्तुहा वल कमर यदा तलाहा वल नहार यदा जल्लाहा वल लैल यदा यक्षाहा, दिन की कसम खाई गई है, उसकी तजल्लियात की कसम खाई गई है, वल लैल यदा यक्षाहा और रात और उसकी जो है कोशिश की कसम, वल्लैल इज़ा यक्षा वस्समाई वमा बनाहा वल अर्ज़ वमा तहाहा, आसमान की कसम, जमीन की कसम, जमीन की कसम उसके बिछाए जाने की कसम, आसमान की कसम उसके साहिबा की कसम, इस तरह कसमें खाई गई हैं। अब बताइए इसमें से कोई भी चीज, कोई चीज ऐसी है कि जो इंसान के लिए अजीम ना हो, इंसान की जिंदगी में उसकी जरूरत ना हो? जमीन और उसका बिछाया जाना, अगर ये जमीन न बिछाई जाती इंसान के लिए तो क्या इंसान इस दुनिया में जिंदा रह सकता था? ये जो चलने फिरने की हमवार जो जमीन की गई है, जो फर्श की तरह जमीन को बिछाया गया है, हमारे लिए आमादा किया गया है, रात और उसका साया, कि अंधेरा ना होता तो हमें सुकून कहां से मिलता? जब आप सोने लगते हैं तो कहते हैं चराग गुल कर दीजिए, लाइट बंद कर दीजिए, आंखों को चुभ रही है, नींद नहीं आएगी, अंधेरा हो चाहिए, तो ये सूरज की रोशनी में कैसे नींद आती है? इसको जो है तनवु भी चाहिए ना इंसान को, और सूरज की रोशनी भी एक मिकदार में नहीं रहती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है फिर आहिस्ता आहिस्ता घटती है, एक दिन में कई तहवुलात और फिर उसके बाद अंधेरा, और अंधेरा और उसकी अहमियत, अगर ये अंधेरा ना होता तो हमें सुकून कैसे मिलता, हमें आराम कैसे मिलता? तो ये हमारे लिए बहुत अहम चीज है, जिस चीज की कसम की खाई जा रही है, जिसके लिए खाई जा रही है, वो उसके लिए तो बहुत जरूरी है। वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, इसमें भी वैसे ही कसम खाई जा रही है, वक्त ज़ुहा की कसम, जिस वक्त जो है सूरज बरामद हो गया उस वक्त की कसम, जब सूरज तुलू हो चुका, वल्लैल इज़ा सजा और उस रात की कसम के जब वो ठहराव की हालत में आती है और तो हर चीज को जो है छुपा देती है, उस वक्त की कसम, उस रात की कसम। इससे पहले शायद मैं जिक्र किया हूं कि सैयद कुतुब ने एक तहकीक पेश की थी कुरान मजीद के मुतालिक, तस्वीर उल फनी फिल कुरान मजीद के उनवान से जो तहकीक पेश की है सैयद कुतुब ने, उसमें जो है इस सूरे को जिक्र किया है खास तौर पर, अपने इस्तेशहाद के तौर पर, अपने दलील की शाहिद के तौर पर वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा को पेश किया है, और यह सूरा जो है पेश करके अपनी दलील, अपनी जो उनका दुआ था जो पेश करना चाह रहे थे, जो मतलब पेश करना चाह रहे थे सैयद कुतुब, वो ये पेश करना चाह रहे थे कि कुरान मजीद की आयतों में एक किस्म की आहंग, एक सौत है, नज्म है आयतों के दरमियान में, तो उसमें वो कहते हैं कि जिस तरह से जो है एक माँ जब अपने बच्चे को छोड़ के चली जाती है और बच्चा माँ की याद में तड़पता रहता है और उसके लिए परेशान रहता है कि अचानक माँ मुझे छोड़कर चली गई, उसके लिए गम गुस्सा खाता है, रोता है, सर पीटता है, चिल्लाता है, चीखता है, पुकारता है, माँ को याद करता है। अब माँ जब वापस आती है बच्चे को, बच्चे के लिए, तो साथ में बहलाने वाले कुछ खिलौने भी लाती होगी, है ना, और उसे समझाने का इरादा रखती है, और जब करीब आती है तो फिर उसे मनाती है, तो किस तरह से माँ अपने बच्चे को मनाती है, किस तरतीब के साथ, कि सुकून की कसम, इत्मीनान की कसम, है ना, और उसके बाद जो है मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद नेमतों का जिक्र कि क्या मैंने तुम्हें ये नहीं किया था, तुम क्यों रूठ गए, क्या जब जब तुम रोए क्या मैंने तुम्हें दिलासा नहीं दिया, क्या तुम भूखे हुए तो मैंने खाना नहीं खिलाया, क्या तुम प्यासे रहे तो मैंने पानी नहीं पिलाया। इस तरह की अपनी खिदमात को याद दिलाती है। उसके बाद फिर एक सबक भी देती है कि देखो किसी को छिड़कना नहीं, इस तरह से किसी को सताना नहीं। तो जो तरतीब के साथ आहिस्ता आहिस्ता जैसे माँ अपने बच्चे को बहलाती है, वो किस्म सूरह वज़्ज़ुहा में आपको मिलेगा। सैयद कुतुब जो कहते हैं कि जब आयतों का सिलसिला रुक गया था, आयतों का नुज़ूल जब रुक गया था और रुकने के बाद जब लोग नबी करीम से सवालात करते थे कि कहां गई वो आयत, क्यों नहीं आती कोई आयत, क्या आपका अल्लाह से रिश्ता टूट गया है, क्यों अब कोई कुरान की आयत नहीं आती, क्यों कोई वही नहीं आती, सिलसिले वही मुनक़ता होने के बाद फिर जो सिलसिले वही शुरू हुआ। तो इस तरह से अल्लाह सुभानहु व तआला ने अपने हबीब को मनाया है कि वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। कि कसम है उस वक्त की, उस तुलू की कि जिसमें ठहराव पैदा हो जाता है। ज़ुहा उस वक्त का नाम है कि जब जो वक्त सूरज चढ़ जाता है ऊपर, जिस वक्त सूरज चढ़ जाता है तो फिर चिड़ियों की चीख पुकार भी बंद हो जाती है, समंदर की जो रवानी होती है ना वो भी थमने लगती है आहिस्ता आहिस्ता। तुलू के वक्त समंदर की मौजों में जो है तलातुम होता है, वो तलातुम आहिस्ता आहिस्ता थमने लगता है ना। जानवरों की मुर्गो तमाम माही और तमाम जानवरों की आवाजें सुबह सुबह जो है वो चीखते चिल्लाती रहती हैं, कोयल की आवाजें और जो है चिड़ियों की आवाजें चहचहाट हैं, ये चहचहाट आती रहती है, आवाजें आती रहती हैं। घरों में भी देखिए हंगामा रहता है, सुबह बच्चे उठ रहे हैं स्कूल जा रहे हैं, हंगामा हो रहा है, लेकिन जब 10-11 बजे का वो वक्त होता है कि जब हर तरफ सुकून सा छा जाता है, रोने वाले बच्चों को गजा मिल जाती है, जानवरों को जो है अपनी गजा मिल जाती है, समंदरों में ठहराव पैदा, यानी उस वक्त की कसम के जब सूरज चढ़ जाए और एक सुकून का वक्त पैदा हो जाए। वो सुहा वल्लैलि इज़ा सजा, और रात का वो वक्त कि जब रात हर चीज को ढांप ले, उस वक्त की कसम, उस सुबह की कसम कि जब मरहले इत्मीनान में आ जाए, उस रात की कसम कि जब मरहले सुकून में आ जाए। तो वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा के बाद मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला के तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें छोड़ा नहीं है। والآخرت خير لك من الأولى کہ تمہارے لیے آخرت دنیا سے زیادہ جو ہے فضیلت رکھتی ہے۔ ولسوف یعطیک ربک فترضى ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں وہ نعمت سے نوازے گا جسے لے کر تم راضی ہو جاؤ گے۔ الم یجدک یتیما فآوی، جب تم نے نہیں دیکھا جب تم یتیم تھے ہم نے تمہیں سہارا دیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، کہ اس وقت ہم نے تمہیں ہدایت نہیں دی. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ آیتوں میں آہنگ اور صوت پیدا ہوتا ہے. اور یہ جو قسم بھی کھائی جا رہی ہے, یہ کون سی قسم کس وقت کس کے لیے کھائی جا رہی ہے, یہ بڑی اہمیت کی بات ہے. یعنی یوں ہی قسم نہیں کھائی گئی ہے. قسم کھانے کے بعد کے جو آپ مرحلے دیکھیں گے, اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ قسم کس کے لیے کھائی جا رہی ہے اور کون سی قسم. کبھی جلالت کی قسم کھائی گئی ہے تو کچھ سمجھانے کے لیے, کبھی وقت, کبھی جو ہے جمال کی قسم ہے, کبھی جلالی قسمیں ہیں, کبھی جمالی قسمیں کھائی گئی ہیں. یہ سب ہدایت کے لیے, یہ سب جو ہے سمجھانے کے لیے, یہ سب جو ہے منانے کے لیے. اور جو ہے کبھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ڈانٹ کر سمجھایا ہے, کبھی غصہ کر کے سمجھایا ہے, کبھی جو ہے جلال اور غضب سے سمجھایا ہے, کبھی جو ہے وعید کے ذریعے سے سمجھایا ہے, کبھی وعدے کے ذریعے سے سمجھایا ہے, کبھی جنت کی بشارت کے ذریعے سے سمجھایا ہے, کبھی جہنم کے انذار کے ذریعے سے سمجھایا ہے, کبھی دوزخ سے ڈرایا ہے تو کبھی جنت سے بہلایا ہے. یعنی کبھی بیم ہے تو کبھی رجا ہے, کبھی خوف ہے تو کبھی امید ہے. تو جس کو جس وقت جس طرح سے سمجھانا ہے, کبھی امید دلا کر سمجھایا گیا ہے, ہدایت دی گئی ہے کہ دیکھو نیک عمل بجا لاؤ گے تو تمہارے لیے جنت کی نہریں ہیں, حوریں ہیں, باغات ہیں, تسنیم ہیں, کوثر ہیں, سلسبیل ہیں. اور کبھی کہا گیا کہ اگر تم بد اعمال اختیار کرو گے تو دوزخ ہے, زخم ہے, اور جو ہے جہنم کے پس درجات ہیں. یہ کہہ کے انسان کو سمجھایا گیا ہے. کبھی جہنم کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے. تو کن لوگوں کو جہنم سے ڈرایا گیا ہے؟ کہا کہ جہنم کا گھر ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہے جو زمین میں بیجا بالا دستی اور فساد برپا کرتے ہیں. جہنم کے پس طبقات ان کے لیے ہیں کہ جو لوگ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ما سلککم فی سقر, کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی؟ تو لم نکو من المسلین, کہ ہم مسلین میں سے نہیں تھے. واجبات کے کو جو لوگ ترک کرتے ہیں ان کو جہنم کے ذریعے سے ڈرایا. جو لوگ واجبات پر عمل کرتے ہیں اور اطاعت پروردگار کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے وعدہ دیا گیا ہے. تو کبھی جن کو جس چیز کی جب جس طرح سے سمجھانا ہے اس طرح سمجھانے کے لیے ویسی قسمیں کھائی گئی ہیں. کبھی قسم کھائی گئی ہے کہ والفجر, اس صبح کی قسم, پاؤ پھٹنے کی قسم, جو رات کی تاریکی کو جو چیر کے صبح نمودار ہوتی ہے, تو کس طرح سے تاریکی کا پردہ چاک کر دیتی ہے اور جو ہے دھماکہ ہوتا ہے, نور کا دھماکہ. انقلاب آ جاتا ہے اس میں, صبح ہوتے ہی ایک انقلاب آتا ہے. وہ انقلاب کیسا ہوتا ہے؟ رات کی تاریکیوں کا پردہ چیر کے ایک نور کا دھماکہ ہوتا ہے. ماں خمینی کہتے تھے انقلاب ماں انفجار نور بوت, کہ ہمارا انقلاب ایک نور کا دھماکہ تھا. انفجار فجر, والفجر والیال عشر, اس صبح کی قسم, والفجر والیال عشر, اور دس راتوں کی قسم, والشفع والوتر, اور جفت و طاق کی قسم. اسی طرح قسم کھائی گئی والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب, قسم کھائی گئی ہے آسمان کی قسم, اور ہر اس شے کی قسم کہ جو شب میں آتی ہے. اور تم کیا جانو کہ شب میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب, ستارے درخشاں کی قسم. شب کی تاریکی میں کون سی چیزیں طلوع ہوتی ہیں؟ जब अंधेरा छा जाता है तो अफलाक पे सितारे तुलू होते, जोहरा नजर आता है, चांद नजर आता है, सितारे नजर आते हैं, ये तारिकियों में नजर आते हैं। और सूरज तुलू होते ही सूरज की मौत, चांद सितारों की मौत। तो ये शब अपने साथ जो है एक पूरा काफिला ले, उस शाम की कसम और उस शाम में तुलू होने वाली चीजों की कसम, उस शाम में आने वाली। तो कौन सी चीजें हैं जो अंधेरों में आती है, जो शब में आसमान पे दिखाई देती हैं? आसमान की कसम और वो शय जो शाम में नजर आए और शब की तारीकियों में नजर आए, और तुम क्या जानो कि शब की तारीकी में क्या नजर आता है, और सितारे की कसम। मुख्तलिफ कस्में कभी कहा बस समा दातिल बुरूज, बुर्ज वाले आसमानों की कसम, जात बुरूज बुर्ज वाले आसमानों की कसम। वली यौमिल मौऊद, लौट आने वाले दिन की कसम। कभी कसम खाई गई वत्तीन वज़ज़ैतून, इंजीर की कसम, जैतून की कसम। इंसान को कौन कौन सी नेमतें नहीं दी गई हैं, सूरह रहमान में जिक्र आया है ना, ये इंसान के लिए नेमतें हैं। उसको मुख्तलिफ, आप देखिए जब आदमी बीमार पड़ जाता है तब मालूम होता है कि जो है कौन को, एक नुस्खा जो है हर बीमारी के लिए नहीं दिया जाता, हर बीमारी के लिए अलग नुस्खे की जरूरत होती है। क्योंकि इंसान जो है बड़े अजीब एहसासाती मखलूक का नाम है, कभी उसका जो है कभी उसको नजला आता है तो कभी बुखार आता है, कभी आंखों में दर्द होता है तो कभी कान में दर्द होता है, कभी पेट में तकलीफ होती है तो कभी अंतड़ियों में तकलीफ होती है ना, कभी कमर में दर्द होता है तो कभी जो है गर्दन में दर्द होता है ना। तो उसके लिए हर चीज के लिए अलग अलग नुस्खे रखे गए, एक ही नुस्खा हर मर्ज की दवा नहीं है। तो इसी तरह अल्लाह सुबहानो ताला ने इतने मेवे फल फ्रूट रखे हैं कि कभी जो है गर्मी के लिए, कभी सर्द मौसम के लिए, कभी गर्म मौसम के लिए, कभी जो है आंखों की ठंडक के लिए, कभी दिमाग की तकवियत के लिए, कभी कल्ब की सुकून के लिए, कभी फेफड़े के लिए तो कभी गुर्दे के लिए, कभी जो है कभी किसी चीज के लिए, मुख्तलिफ चीजों के लिए मुख्तलिफ मेवे रखे हैं। और वो सब चीजें जरूरी है, वत्तीन वज़ज़ैतून के, तीन भी की कसम और जैतून की कसम, इंजीर की कसम और जो है जैतून की कसम, ये इंसानी जिंदगी की अहम तरीन चीजें हैं। वल आदियात सबहन, फल मुगिरात कदहन, फल मुगिरात सबहन, कसम है उन दौड़ने वाले घोड़ों की कि जो जिहाद नफ्स में कदम आगे बढ़ाते हैं और दौड़ते, उन दौड़ने वाले घोड़ों की कसम कि जो अपने सुमे अस्प से पत्थरों में आतश पैदा कर देते, पत्थरों में आतश पैदा कर देते, और सुबह दुश्मनों को गारत कर देते हैं। फल मुगिरात सबह, फला उक्सिमु बिल खुन्नस अल जवार अल कुन्नस वल लैल इज़ा असअस, सूरह तकवीर की आयत के जिसमें ये इरशाद हो रहा है, कसम है उन सितारों की जो पलटने वाले हैं और उसकी के जो पिन्हा छुपने वाले हैं, और छुपने वाले सितारों की कसम और पलटने वाले सितारों की कसम। कसम है वो लैल इज़ा असअस, उस शब की कसम है जो पीछे आती है, और उस सुबह की कसम के जो तुलू होती है। तो इस तरह की कसमें खाई गई हैं, और ताकीद करते हुए अल्लाह सुबहानो ताला ने मतालिब को हिदायत के लिए बयान किया है, और मज़ाहिर तबीयत को जिक्र किया गया है। उन मज़ाहिर को जो जिंदगी के जो आसार हैं उन्हें पेश किया गया है, अल्लाह सुभान व तआला की उन निशानियों को जिक्र किया गया है। ये वो निशानियां हैं जो हर बा ईमान को नजर आनी चाहिए। ये खुद जो है इंसान की जो है करामत के लिए काफी है कि अल्लाह सुभान व तआला ने ये सारी चीजें, इतनी अजीम चीजें इंसान के लिए रखी हैं, इतनी कीमती चीजें इंसान के लिए रखी हैं। इसका एहसास अगर इंसान को हो जाए कि ये सब चीजें होती हैं, लेकिन इसका शऊर जानवरों को नहीं होता। इंसानों के सतह फिक्र को बुलंद किया गया है और उन्हें ये तजल्लियात दिखाई गई हैं जिसके अंदर इंसान घिरा हुआ है, लेकिन उसका एहसास नहीं है कि वो उन तजल्लियात को देखे। तो अल्लाह सुभान व तआला इंसान को अपनी आयात और अपनी निशानियां दिखा रहा है। سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ कि हम अनकरीब हैं, अपनी निशानियां दिखाएंगे। देखिए कुरान आ चुका है, लेकिन कितने लोग हैं जो कुरान से आशना है। इसी तरह से हम आयतों के बीच में रहते हैं। देखिए दो कुरान है ना, एक साहब ने किताब लिखी थी दो कुरान, कई हंगामा भी हुआ हम लोग, क्योंकि लोगों ने कुरान को किताब पढ़ी नहीं थी, बगैर पढ़े हुए लोगों ने एतराज कर दिया कि भाई दो कुरान कैसे हो सकते, कुरान तो एक है। तो उन्होंने बताया कि एक कुरान तदवीन है, एक कुरान तकवीन है। कुरान तदवीन यही है जो दफ़अतैन में जो है, ये जो दो जो जिल्द में हमारे पास रखी हुई है, लेकिन एक कुरान तकवीन की कुरान है जो जिसकी आयतें कायनात में बिखरी हुई हैं, और हम इन आयात के बीच में रहते हैं, हम कुरान के अंदर रहते हैं। जमीन आयत खुदा है या नहीं, आसमान आयत खुदा है या नहीं, सितारे आयात खुदाबंदी है या नहीं, हवाएं अल्लाह की निशानियां है नहीं, फजाएं अल्लाह की निशानियां है नहीं, हम इन्हीं आयात के बीच में रहे। इसीलिए इमाम खुमैनी कहते थे आलम महजर खुदा, किधर महजर खुदा गुनाह न कुनी, कि जो है आलम अल्लाह सुभान व तआला की बारगाह है कि इस बारगाह में हम गुनाह न करें, क्योंकि हम बारगाह में दाखिल हो चुके हैं, आयतों के दरमियान में रहते हैं, हम आयत के ऊपर से चलते हैं। यानी ये जमीन जो है वो जमीन मौला है, ये कि जिस ये अल्लाह की निशानी है, अल्लाह ने इसे खल्क किया, ये मखलूक खुदा है, इसके ऊपर मखलूक खुदा होने का लेबल लगा हुआ है कि ये जो है मेरे परवरदिगार है। ये कहाँ की बनी हुई है, जापान की बनी हुई है कि जो है ना कोरिया की बनी हुई है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये कि परवरदिगार के पास की बनी हुई है। तो ये कितनी अहमियत की हामिल है, लेकिन इंसान इन आयात को देखता, मौजज़े देखता नहीं है। मौजज़े क्यों दिखाए जाते हैं, ताकि ईमान में इजाफा हो, ताकि काफिर है तो मोमिन हो जाए, है ना, काफिरों को मौजज़ा दिखाया जाता है कि मोमिन हो जाए। आज भी बाज़ मोमिन कहते हैं उनको मौजज़ा देखना है, मतलब ये है कि हमें अपने ईमान में तकवियत पैदा करनी है। अभी यकीन नहीं आया अज़मत हुसैन पर, यकीन नहीं है मौलाए कायनात की जो है तसर्रुफात पर, यकीन नहीं है क्या करामात औलिया पे, हमें यकीन नहीं है, या रसूल के रसूल होने में अभी हमें शक है, कुरान के किताब होने में शक है, अल्लाह के खुदा होने में शक है। तो क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को मौजज़ा दिखाया जाता है, ताकि मौजज़े के ज़रिए से उनका ईमान में तकवियत पैदा हो। तो अब ये जो मौजज़े अल्लाह सुभान व तआला दिखा रहा है, लेकिन ईमान में जिना क्यों नहीं पैदा होती, ईमान में तकवियत क्यों नहीं पैदा होती, जबकि इतनी आयतें वो देख रहे हैं, अल्लाह की इतनी निशानियां देख रहे हैं। अगर ये निशानियां इंसान देख ले तो यहीं पर उसको मेराज मिल जाए, क्योंकि मेराज पे ले जाकर निशानियां जो दिखाई जाती हैं, अल्लाह की अजमतें तो बताई जाती हैं, ताकि अल्लाह की अजमतें नजर आ। अभी हमारे आंखों पे पर्दे पड़े, हम गफलत के पर्दे पड़े हुए, हम आयतों के बीच में रहकर भी हमें ये आयतें नजर नहीं आती। यानी ये हर चीज, हर लहजा, हमें हर चीज हमारा दामन हिलाकर हमें झिझोड़कर इस्मा इफ़हम कर रही, यानी हमारी तलकीन सुबह शाम पढ़ी जा रही है, हमारी तलकीन सुबह शाम सुबह की जो है नसीम सुबह के झोंके हमें हिला हिला के कह रहे हैं इस्मा इफ़हम, सुन और समझ के तेरा परवरदिगार एक है। फिर तुलू होने वाला सूरज हमें जो है वो हिला हिला के कहता है इस्मा इफ़हम। ये अल्लाह की वो तलखीन है जो दिन और रात अल्लाह की मखलूकात हमें पढ़ के सुना रही है, फिर उसके बावजूद भी हम अल्लाह के वजूद का इनकार करते हैं कि कब्र में जाने के बाद फिर सवाल हो तो जवाब नहीं दे सकते। फिर तलखीन पढ़ने की जरूरत होती है कि मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, जबकि फजाए हमसे पूछ रही बता तेरा परवरदिगार कौन है, हवा रास्ता रोक के पूछ रही है बता तेरा परवरदिगार कौन है, दरख्त अपनी तरफ मुतवज्जे करके पूछता है कि बता तेरा खालिक कौन है, कैसे दरख्त अजीब व गरीब किस्म के सामने आते हैं इंसान के। जाइए जंगल में दरख्त ही दरख्त नजर आएंगे, दरख्त ही दरख्त, हर दरख्त हैबतनाम है? जो अपनी तरफ मुतवज्जे करके कहता है बता मुझे किसने पैदा किया, बता मुझे किसने पैदा किया, बता मेरा खालिक कौन है, तो वो हमें क्या कर रहा है, तलखीन कर रहा है, हमें झिझोड़ रहा है, हमारे जमीरों को झिझोड़ रहा है, हमारे जहनों को झिझोड़ रहा है और पूछ रहा है बता तेरा रब कौन है, बता तेरा रब कौन है। उसके बावजूद भी हम अनजान आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो कभी उठने वाली मौजें पूछती हैं बता तेरा रब कौन है, वो भी हमें झिझोड़ कर तलखीन करती है, हर चीज पूछती है, लेकिन हम हैं कि गफलत में, हम कोई किताब, हम कोई निशानी देखते ही नहीं। अल्लाह निशानी का मतलब क्या है, निशानी उस वक्त वो निशानी है जो मुतवज्जे करे तो निशानी है, किसी तरफ इशारा करे तो निशानी है, अपनी ही तरफ मुतवज्जे कर ले तो वो निशानी नहीं है, बुत है। तो हम हर चीज को बतौर बुत देखते हैं, निशानी नहीं देखते। देखते तो हैं, सूरज को देखते हैं उसकी पूजा शुरू कर देते हैं, चांद को देखते हैं उसके सामने सर झुका देते हैं, सितारों को देखते हैं उसके सामने सर झुका देते हैं, है ना। जब ये लोग सवाल करते हैं, दरख्त सवाल करता है तो दरख्त के सामने झुक जाते हैं, सूरज सवाल करता है तो सूरज के आगे झुक जाते हैं, वो पूछता है बता तेरा रब कौन है, तो कहते तू ही मेरा रब है, समझते हैं कि सूरज खुश हो जाएगा। जब चांद पूछता है बता मेरा रब कौन है, तो कहते तू ही मेरा रब है, समझते हैं चांद ये सुन के खुश हो जाएगा। अली पूछते हैं बता तेरा रब कौन है, कहते तू ही हमारा रब है, ये समझते हैं कि अली सुन के खुश हो जाएंगे कि तू मुझे अपना मेरा मुझे रब कह रहा है, जबकि अली भी नाराज हो जाएंगे, अंबिया नाराज हो जाएंगे, मुरसलीन आए थे इंसानों को अल्लाह की तरफ ले जाने के लिए, कोई नबी ये नहीं कह रहा था कि मेरी पूजा करो मेरा मुजस्मा बना दो, ईसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मेरा मुजस्मा बना के मस्जिद में लटका दो, लेकिन इन्होंने क्या किया, मस्जिद को चर्च बना दिया और मस्जिद को मंदिर में बदल दिया, ईसा अलैहिस्सलाम को मुजस्मा रख दिया, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम क्या पैगाम लेके आए थे, क्या कहा था वो, لقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله, हमने हर कौम में नबियों को मबूस किया, ان اعبدوا الله, कि अल्लाह की इबादत करें, हर नबी ने यही कहा कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो, लेकिन किसी ने भी तवज्जो नहीं दी, किसी हर किसी ने कहा कह दिया कि आप ही हमारे परवरदिगार हैं, आप ही हमारे रब हैं, और ये कितने बेवकूफ लोग हैं जो कहते हैं अली को कहते हैं परवरदिगार कहने दो, क्या मतलब है इसका, खुद अमीरुल मोमिनीन बेजार हैं ऐसे लोगों से, जनाब ईसा बेजार थे ऐसे लोगों से, जनाब मूसा बेजार थे ऐसे लोगों से, आइम्मा बेजार थे, औलिया बेजार हैं, और तमाम खासान खुदा इस बात से राजी नहीं है कि उनको खुदा कहा जाए, बल्कि उन्होंने हमेशा यही कहा कि हम तुम्हें ये निशानी दिखा रहे हैं ताकि तुम अल्लाह सुभानहु व तआला पर ईमान लाओ और उस पर उसका इकरार करो और उसकी तौहीद और वहदानियत। तो लिहाजा जो कस्में खाई गई हैं हम उनकी तरफ तवज्जो करें कि वो हमारे लिए बहुत ही अहम है और हम इन निशानियों पे गौर करें और इसमें जितना जितना हम गौर करेंगे उतना उतना हम अल्लाह की अजमत हमारे दिलों में जागुजी होगी, हम अल्लाह की अजमतों का इकरार करेंगे और हमारे ईमान में जिला पैदा होगा। जैसे जैसे आयतें पढ़ी जाती हैं इंसान के ईमान में इजाफा होता है, इसी तरह जब हम आयतों को देखेंगे तो हमारे ईमान में इजाफा होगा। तो लिहाजा हम कोशिश करें कि इन शबों में कुरान मजीद की तरफ तवज्जो करें, कुरान मजीद को पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। 100 आयतें पढ़ने से बेहतर है कि एक आयत में गौर व फिक्र करें और उसे समझने की कोशिश करें। हमारे जितने उलमा गुजरे हैं, हमारे जितने मुफस्सरीन गुजरे हैं, उन्होंने सबसे अच्छी इबादत क्या है, तज़किरे कुरान है, फहमे कुरान है, कुरान मजीद को समझने की जस्तजू और ज़िक्र कुरान, तज़किरे कुरान, दर्स कुरान, तफसीर कुरान, ये मबाहिज़ कुरानी सबसे बड़ी इबादत है। लिहाजा आप देखेंगे कि जितनी तफसीरें लिखी गई बुजुर्गान ने, हमारे बुजुर्गों ने उस किताब में आखिर में लिखा है शबे कदर, यानी ये तफसीर मुकम्मल किया हमने शबे कदर को, यानी शबे कदर को उन्होंने सबसे बड़ी इबादत क्या समझा, तफसीर कुरान लिखना सबसे बड़ी इबादत शुमार किया। लिहाजा अगर शबे कदर हम जो है ये तमाम शबे जो हैं आखिरी ताक शबे, इसकी हर शब पे शबे कदर का इस्तेमाल है, लिहाजा इस हर शब को जो है तज़किरे कुरानी और मबाहिस कुरानी से रौनक बख्शने की ज़रूरत है कि हम दुआ करें परवरदिगार हमारे कुलूब को परवरदिगार नूर वही नूर ईमान से मुसैया फरमा, नूर मोहब्बत अहले बैत से मुनव्वर फरमा, परवरदिगार मुसलमानों की जान माल व इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, परचम इस्लाम मुस्लिमीन को सरफराज फरमा, दुश्मनान इस्लाम दुश्मनान दीन को नेस्त व नाबूद फरमा, बिलखसूस परवरदिगार गज़ा के मुसलमानों को और इराक के मुसलमानों की नुसरत फरमा और उन्हें इन अजाब से अजाब से छुटकारा अता फरमा, परवरदिगारा मुंजी आलम बशरियत के ज़हूर में ताजील फरमा, उनके आबान और सर में शुमार फरमा।